नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सबसे पहले आप सभी से यह अनुरोध है कि आप कृपया हमें सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारे जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं उनको भी ज्वाइन करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन प्लान्स ज्वाइनिंग बटन के एवज में दिया गया है, जिसके माध्यम से हम एक नेशनल नैरेटिव फंड एस्टैब्लिश कर रहे हैं। आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और सुपर चैट के माध्यम से। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस रिपोर्ट की जो कि गजवाए हिंद का पूरा एक टेम्पलेट, एक रोड मैप दिखा रही है, दर्शा रही है। जी हाँ, जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक फोरम ने ये दिखाई है, ये रिपोर्ट पब्लिश की है। और वस्तुतः इसमें कोई नई बात नहीं है, ये ईएसी जो है, इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इसकी ये रिपोर्ट है। और ये वो फैक्ट्स बता रही है जो सेंसस ने पहले से दिए हुए हैं। मैं आज देख रहा था ओएसी से कोई पत्रकार महोदया पूछ रही थी कुछ प्रश्न और ओएसी उनको डांट रहा था, कौन सी रिपोर्ट, किसने छापी, किसने दिखाई। और उन पत्रकार महोदया को यह उत्तर देते नहीं बना कि भाई रिपोर्ट में तो वही लिखा हुआ है जो सेंसस में छपा हुआ है, यानी सेंसस में ये छपा हुआ है कि मुसलमानों की आबादी 1951 से लेकर 2015 के बीच में 43% बढ़ गई। जो आबादी मुसलमानों की एक समय 9.8% थी वो 14.2% या 3% हो गई, और हिंदुओं की जो आबादी थी वो 84.9%, लगभग 85% हुआ करती थी, वो घट के पहुंच गई 78.06% पर। तो यह क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि जो रिलेटिव ग्रोथ है दोनों की, यानी कि जो रिलेटिव ग्रोथ है हिंदू पॉपुलेशन की और जो रिलेटिव ग्रोथ है मुस्लिम पॉपुलेशन की, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। और यह अंतर क्यों है, ये अंतर इसलिए है कि आपको मैं थोड़े से और तथ्य यदि बता दूं कि एक समय जब ये 1951 की बात हो रही थी, 1951 से 61 के बीच के जब फिगर लिए गए थे, तो मुस्लिम TFR जिसको कहते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट जो था वो 4.1% था, और उस समय हिंदू ग्रोथ रेट जो था वो 3% के आसपास था। लेकिन हिंदू रेट तो घटते घटते हो गया 1.8%। आप समझ लीजिए 1.8% जो है वो जो रिप्लेसमेंट रेट जिसको बोलते हैं 2.1%, उससे भी 3 अंक कम है, यानी 0.3% कम है। कम तो मुसलमानों का भी हुआ है, 4.1% से घट के इस समय वो लगभग 2.4% है। लेकिन ये जो 0.6% का जो ये अंतर है, ये बहुत गंभीर है, और इसी को एड्रेस करने के लिए समय समय पर पॉपुलेशन पॉलिसी इत्यादि की बात होती रहती है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये पॉपुलेशन पॉलिसी की जो बात होती है उससे कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई अंतर पड़ने वाला है। अंतर जिससे पढ़ने वाला है वो इससे पढ़ने वाला है कि जो हमारा नेशनल नैरेटिव है, जो लेफ्टिस्ट और लिबरल्स के हाथ में है और जिसमें इस्लामी घुस गए हैं, एक प्रकार से इस्लामियों का, लेफ्टिस्ट का, लिबरल्स का एक गठजोड़ बन गया है, जिसको हम पंचमक्कार गठबंधन भी कई बार कहते हैं। तो ये जो पंचमक्कारों का गठबंधन है, इसको जब तक आप नहीं तोड़ेंगे, जब तक एक राष्ट्रीय विमर्श, एक राष्ट्रीय नैरेटिव नहीं इस्टेब्लिश होगा, तब तक हिंदू जो है वो अपने, जिसको हम कहते हैं, सर्वधर्म समभाव में व्यस्त रहेंगे और सभी को समदर्शी होकर देखते रहेंगे। अपने हित की जो बातें हैं या अपने समाज के जो हित की बातें हैं उन पर ध्यान नहीं देके और दूसरे के समाज के प्रति कोई अन्याय हो रहा है तो उसको लेकर जो है वो चिंतित अधिक रहेंगे। यद्यपि थोड़े थोड़े बदलाव हो रहे हैं, लेकिन वो थोड़े थोड़े बदलाव बहुत धीमे हैं। अब आप ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में तो 50% से अधिक जनसंख्या बढ़ गई, जो जनसंख्या 20% से कुछ कम हुआ करती थी 1951 में, वो आज 33% से अधिक है। तो ये आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जनसंख्या दर की वृद्धि जो है वो अत्यंत अधिक है, और इसमें बहुत सारे घुसपैठियों का भी निश्चित रूप से योगदान होगा। और यह तब है जब पश्चिम बंगाल में पूरे भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सबसे कम है, यानी हिंदुओं की जो वृद्धि दर है वो तो लगभग 1.4 तक वहां पहुंच गई है, मुसलमानों की भी कम है, लेकिन है उनसे तो 5 पॉइंट तो ज्यादा ही है, 1.9% उनकी है, वो राष्ट्रीय एवरेज से कम हो सकती है, लेकिन वहां तो उनकी स्थिति वही है ना कि जो हम कह रहे हैं कि भाई आपकी जो जनसंख्या है लगातार कम हो रही है अनुपातिक रूप में, वो वहां हो रहा है। यही हाल असम में। और सबसे गंभीर तो आप देखेंगे कई जो राज्य हैं जिनको मुस्लिम बाहुल्य नहीं माना जाता, जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में तो भाई एक तरह का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, 40% जनसंख्या बढ़ी है, 40% क्यों लगभग मैं गलत बोल गया भाई, 50% तो वेस्ट बंगाल में बढ़ी है, उससे भी अधिक बढ़ी है, लगभग 55% जनसंख्या बढ़ी है। तो इन आंकड़ों को देखते हुए हम इसको नकार नहीं सकते, और इसलिए जो भी इस समय डिबेट हो रही है और इसको सदैव की भांति कांग्रेस और जो इस्लामी ग्रुप हैं उसको नकारने का प्रयास कर, उनको वो नकारने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या दायित्व तो बनता है, हमारा दायित्व तो ये बनता है इसको हम मेन स्ट्रीम में लाएं। इसमें दोनों बातें हैं, एक तो जो राज्य ने प्रोत्साहन दे रखा है उन प्रोत्साहनों में कमी होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है, हम पॉपुलेशन लॉ की बात नहीं कर रहे, एक पॉलिसी होनी चाहिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, उससे अधिक यदि कोई जाता है तो उसको सरकारी इंसेंटिव्स इत्यादि समाप्त होने चाहिए, उस सरकारी स्कीम का कोई लाभ नहीं मिलना चाहिए, ये तो स्पष्ट रूप से लागू किया जा सकता है ना। बाकी जब आप पॉपुलेशन लॉ की बात करते हैं तो पॉपुलेशन लॉ में अभी आप देख रहे हैं कि यदि आप देखें कि शहरों में क्या हो रहा है, और हिंदू आगे बढ़ गए हैं और जो ऊपर की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं वो तो कोई 2 से ज्यादा बच्चे तो पैदा ही नहीं करते, बल्कि आजकल का जो लेटेस्ट फैशन है मॉडर्न हिंदूज में वो ये है कि 1 या 0, एक भी बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। जो हिंदू संस्कार है, जो हिंदू सनातन धर्म है, जो पितृ ऋण को पंच ऋण में से एक रखता है, और उस पितृ ऋण का जो महत्वपूर्ण अंग है वो ये है कि आप अपनी वंश वृद्धि करेंगे, और वंश वृद्धि करने के लिए आवश्यक है कि आप एक बेटा एक बेटी तो आपको होना ही चाहिए अवश्य। अब ये सभी के हाथ में नहीं है, लेकिन टारगेट 2 तो मिनिमम है ना। हम अपनी सनातन परंपरा ही भूल गए, और जो लोग गांवों में कम इसका पालन कर रहे हैं उनके लिए आप पॉपुलेशन लॉ ला के उन सीमित कर देंगे, और जो पहले से ही 1 और 0 पर चले गए हैं वो बढ़ाने का आपके कोई उपाय नहीं है। और जहां तक मुस्लिम भाई बहनों का प्रश्न है, वो तो आप जानते हैं कि वहां पर तो कोई ना कोई आंदोलन आ जाएगा, कोई ना कोई उनका फतह जाएगा, और वो कहेंगे कि साहब की शरीयत जो है हमारी सबसे ऊपर है और हम शरीयत के मुताबिक चलेंगे, और कई प्रदेशों में ऐसी सरकारें होंगी जो कहेंगे कि हाँ आप तो शरीयत के मुताबिक ही चलो, आप तो अपनी वंशावली बढ़ाते चले जाओ, और दूसरे जो है वो केवल इसका तमाशा देखेंगे। इसलिए मैं तो सही बात पूछिए तो मैं इस पॉपुलेशन लॉ वाली स्कीम के तो फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं जागरूकता लाने के फेवर में अवश्य हूँ, और एक डिसेबिलिटी कोड लाने के फेवर में हूँ। यदि आप धुबरी का उदाहरण ले लें, असम के धुबरी जिले का, तो वहां की मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि है वो 70-80% की रेंज में है। जो राष्ट्रीय एवरेज आप 43% देख रहे हैं उसमें डुबरी जैसे जिलों का बहुत अधिक योगदान है। डुबरी है, नगांव है, ये जो जिले हैं यहाँ पर बिल्कुल जैसे कहें कि एक तरह के वो एक्सप्रेस ट्रेन के स्पीड से वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है। निश्चित रूप से इसमें बहुत अधिक योगदान है घुसपैठियों का, लेकिन घुसपैठियों का योगदान है तो वो घुसपैठ रोकने के कार्य करे जाने चाहिए। घुसपैठ नहीं रोकेंगे तो ये तो सुरसा की तरह ये सब मामला आगे आगे बढ़ता ही चला जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। गज़वाए हिंद एक रियलिटी है, गज़वाए हिंद एक रिलीजियस मैंडेट है, ये जो है एक मजहबी निर्देश है, और इस मजहबी निर्देश का यदि इतनी आसानी से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के माध्यम से यदि निर्वाह होता रहेगा, साथ में लव जिहाद, लैंड जिहाद, वक्फ जिहाद, इस तरह के तरह तरह के जिहाद और साथ में मिलते रहेंगे, अब तो वोट जिहाद भी शुरू हो गया आपको पता है, और ये होते रहेंगे तो ये लगातार इसमें वृद्धि होती रहेगी, हम इसके लिए कुछ विशेष कर नहीं पाएंगे। अब इसके लिए देखिए कुछ लोग तो कर रहे हैं, योगी जी ने देखिए कल जोरदार कॉल दे दी, जोरदार कॉल उन्होंने दे दी कि जो भी ये सलार मसूद जैसे लोग हैं उनके लिए हमारे पास राजा सुहेल देव जैसे लोग हैं। राजा सुहेल देव ने उस सलार मसूद को जो कि भतीजा था या भांजा था मोहम्मद बिन कासिम का, उसको मार के यहाँ से बाहर किया, जिसके कारण 300 वर्ष इस्लामिक आक्रमण यहाँ से टल गया। तो अब हम सभी को राजा सुहेल देव बनना पड़ेगा, राजा सुहेल देव के जो तत्व हैं वो हमें अपने में सम्मिलित करने पड़ेंगे। और आप ये देखिए कि वो जो सलार मसूद था वो मर के भी अमर हो गया, लोगों ने उसकी वहाँ पर दरगाह बना दी है बहराइच के पास में, और उस दरगाह पे जो है हमारे वो मूर्ख हिंदू जिनको मारने के लिए, जिनको कन्वर्ट करने के लिए, जिनको पूरी तरह से भारत को इस्लामी बनाने के लिए वो आया था, वो वहां जाके मत्था टेकते हैं, मन्नतें मांगते हैं। यद्यपि हम कई बार आपको बता चुके हैं कि कोई भी मन्नत नहीं मांगी जा सकती किसी भी मुसलमान पीर से, वो आपको कोई भी किसी भी प्रकार का आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि काफिरों को केवल हिदायत दी जा सकती है, और यदि काफिर वो हिदायत ना माने, हिदायत का मतलब होता है कि उसको ये कहा जा सकता है कि तू मुसलमान बन जा, और यदि वो हिदायत नहीं मानता है तो फिर उसको जो है अल्लाह के दुश्मन के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए, ऐसा कुरान मजीद कहती है, कुरान स्वयं कह रही है। आप क्या, आप और हम क्या करेंगे, और वो जो है इस चीज को जानते हैं, आपके सामने इसको छुपा कर रखते हैं, अलतकिया करते हैं, और आप इससे प्रेरित होते रहते हैं। तो आइए अब हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं जो आए हैं हमारे सामने। जेबीजेपी जी कह रहे हैं एसडीजी सेंसस 2001 है 79.8% हिंदूज इन 2011, देन हाउ कैन बाय 2015 हिंदू पॉपुलेशन ड्रॉप 78% इन 2015। ये आप प्रश्न बिल्कुल सही है, ये विचारणीय विषय है कि ये जो बताए जा रहे हैं आंकड़े, तो खैर कोई बात नहीं, 7.8% नहीं होगा, 6.8% हो जाएगा, बात तो वही है। नेक्स्ट रोहन वर्मा, ईडी अगेन फाइलिंग द केस अगेंस्ट केजरीवाल फॉर 100 crore मनी ट्रेल, बट आई थिंक एससी विल गिव हिम बेल टुमारो एंड ही विल बी लीथल इन दिल्ली इलेक्शंस व्हिच कैन लीड टू 3-4 सीट्स फॉर आम आदमी पार्टी, यू थिंक? देखिए मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जो है इस स्थिति में कुछ भी करने की स्थिति में है, वो आएंगे और कुछ बोलेंगे भी तो उनकी क्रेडिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है पूरी तरह से जनता की दृष्टि में। आपको ध्यान है कि पिछली बार भी वो पूरी तरह से लड़े थे, लेकिन दोनों का कंबाइंड, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो कंबाइंड टोटल था वो भारतीय जनता पार्टी से कम था। भारतीय जनता पार्टी 56% वोट लेके 7 सीटें पिछली बार जीती थी, इस बार वो 60% तक जाने की संभावना है। अगला नीतीश कुमार, सर सम जर्नलिस्ट समहाउ ऑलवेज एंड अप टेकिंग इंटरव्यू ऑफ कांग्रेस सपोर्टर इंटरव्यू, होप एनडीए एटलीस्ट गेट्स 272 सीट्स, इट इज सो कंफ्यूजिंग ऑनलाइन। मैं क्या कहूँ, आप ऑनलाइन जो भी देखें तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि उनका जो पास्ट रिकॉर्ड है उसको अवश्य चेक कर लें। तो जयपुर डायलॉग्स का भी पास्ट रिकॉर्ड यदि आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि 80% केसेस में हम करेक्ट हैं, और जहां तक लोकसभा का प्रश्न है हम 100% करेक्ट रहे हैं, हम और जो हमें फीड करते हैं जिनके यहां से आता है चिंतामणि जी, उनका 100% का रिकॉर्ड है। नेक्स्ट, जेबीजेपी यूनाइटेड प्रोविंसेस वाज सेंट्रल इन पाकिस्तान क्रिएशन इन 1947, टुडे एज यूपी हैज 20% मुस्लिम्स, 4.5 crore Muslim, almost equal to Pakistan, Sindh, KPK. So back to 1947. मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि जो पूरा का पूरा पाकिस्तान मूवमेंट था वो भारत की जो माइनॉरिटी मुस्लिम प्रोविंसेस थी उनका मूवमेंट था। ये मूवमेंट पंजाब और बंगाल में नहीं था, ये था ही यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, इन्हीं क्षेत्रों का था। तो इसमें आप तो सहमत हूँ, और स्थितियाँ विकट हैं, लोग इधर उधर बात करते भी हैं कि हमको अलग देश एक और दे दो। तो ये अलग देश जो भी मांगते हैं उनको तो हिजरत करने का ही हमें उपदेश देना चाहिए। Epictetus 400 पार पॉसिबल इफ गोइंग बाई BJP's कॉन्फिडेंस। देखिए, कॉन्फिडेंस अलोन डज नॉट मैटर। अभी तक की स्थिति ये है जो हमने कैलकुलेशन किया है, लोग तो 200 के पार बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे कैलकुलेशन से अभी तक 179 सीट्स हैं, और हो सकता है आगे जैसे जैसे जाएंगे हम बताते जाएंगे आपको। 400 पार मुश्किल तो है, असंभव नहीं। इसी के साथ आप आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।